देखेंगे लूका की अंजील में कसा उसका 15वां बाब 18वीं आयत पर दीजिएगा जी। द वेरी पॉपुलर स्टोरी प्रोडिगल सन, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है जी।
I will arise and go to my father,
मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा,
Father, I have sinned against heaven and before
you. बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ,
I am no longer worthy to be called your son.
और इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं।
Treat me as one of your hired servants.
बाप मुझे मजदूरों जैसा कर ले।
And he arose and came to his father.
वो उठा और अपने बाप के पास आया।
But while he was still a long way off,
वो भी दूर ही था।
His father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed
him. वो दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। आमीन जी। लूका की इंजील मुकस्सा उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। सब्जेक्ट है खुद को रिकंस्ट्रक्ट करना, रीबिल्ड करना। मुझे मालूम नहीं है कि हम में से कितने जो है दे आर ब्रोकन, कितने टूटे हुए हैं, कितने अंदर से बिखरे हुए हैं। आई डोंट नो किस कदर स्पिरिचुअली ब्रोकन है, किस कदर फिजिकली ब्रोकन है, किस कदर इमोशनली ब्रोकन है, किस कदर एजुकेशनली ब्रोकन है। आई डोंट नो, बट पाखरू को मालूम है कि हम में से कितने यहां पर बैठे हुए अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से बिखरे हुए हैं। मगर मौका मेरे और आपके पास यह है कि खुदा मौका जात का खुदा है। आमीन। खुदा अपॉर्चुनिटीज का खुदा है। खुदा हमें चांसेस देता है। खुदा दोबारा आने के मौका जात फ्राहम करता है। यह नहीं है कि खुदा के हां मौके नहीं है। खुदा मौके देता है और खुदा दोबारा बुलाता है, दोबारा आवाज लगाता है। किताब मुकदस में लिखा है कि खुदा एक बार बोलता है बल्कि दो बार बोलता है, मगर हम कयास नहीं करते। और यहां पर अभी हमने प्रोडिगल सन की स्टोरी सुनी है, एक खोए हुए बेटे की कहानी है। लिखा कि उसने कहा कि मैं उठकर जाऊंगा, उठकर जाऊंगा। यह जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया ना, उठकर जाऊंगा, दर हकीकत इसमें बहुत कुछ मौजूद है, इसमें बहुत कुछ मौजूद है। मेरी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, मेरी और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इट्स नॉट एन ईजी जर्नी। ये कोई आसान जर्नी नहीं है, ये कोई आसान सफर नहीं है, बल्कि ये एक मुश्किल सफर है। और इस मुश्किल सफर में मुझे और आपको हर लम्हा हर घड़ी इस बात पर नजर रखनी है कि क्या मुझ पर तैयारी का काम किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा तो फिर लम्हा फिक्री है। और यहां पर मुसरिफ बेटा, जिसे प्रोडिगल सन कहते हैं, खोया हुआ बेटा कहते हैं, उसने कहा कि मैं उठकर जाऊंगा। अब ये जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैं उठकर जाऊंगा, इसमें तीन चीजें जो मैं आपके दरमियान में रखना चाहता हूं। नंबर वन ये है कि मुझे और आपको अपनी हालतों पर गहरी नजर डालनी चाहिए। नंबर वन, गहरी नजर डालना, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें रिफ्लेक्ट करना है अपने माजी पर, हमें अपने माजी पर अक्स बंदी करनी है, हमें अपनी माजी पर निगाह दौड़ानी है। और ये मुसरफ बेटा जो है, ये जो खोया हुआ बेटा जो है, इसकी स्टोरी जो है, ये मुझे और आपको झंझोड़ने के लिए काफी है, मुझे और आपको हिलाने के लिए काफी है, मुझे और आपको उठाने के लिए काफी है, मुझे और आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए काफी है। ये वो बेटा है जिसने अपने बाप के हां अपने बाप के खिलाफ बगावत की है और उससे यह कहा कि बाप मुझे मेरा हिस्सा दे, दे जो कुछ मेरा बनता है वो मुझे दे, ताकि मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकूं। ये एक बागी शख्स की मिसाल है जो अपने बाप के घर में नहीं रहना चाहता, जो अपने भाई के साथ नहीं रहना चाहता। ये बागियाना रवैया है, ये बागियाना तबीयत है। इसी तरह मुझे और आपको बाज़ुकात हमें अपने खानदान में नहीं रहना, हमें खुदा के घर में नहीं रहना, हमें खुदा के लोगों में नहीं रहना। यह बागियाना सोच, यह बागियाना रवैया मुसरफ बेटे का है। और वो चाहता है कि वो अपने बाप के घर में नहीं, वो हमें अपना पोर्शन चाहिए, हमें अपनी बरकतें चाहिए, हमें अपना हिस्सा चाहिए, हमें अपनी इनहेरिटेंस चाहिए, मगर हमें बाप नहीं चाहिए, हमें कुंबा घराना नहीं चाहिए, हमें अपने लोग नहीं चाहिए, हमें अपने अजीज नहीं चाहिए, हमें अपनी फेलोशिप नहीं चाहिए, हमें अपनी क्लिसियाएं नहीं चाहिए, हमें अपने अपने अजीज नहीं चाहिए, बल्कि क्या हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है, अपनी डिजायर्स की तरफ देखना है, हमें जो वो रिजेक्ट करना है उसे जो सबका मालिक है। और यहां पर बाप बतौर खुदा आसमानी बाप है, उसे वो रिजेक्ट कर रहा है, उसे वो रद्द कर रहा है, और उसकी निगाह सिर्फ बरकतों पर है। बाज़ुकात ईमानदार सिर्फ बरकतों की सोचता है, रिलेशनशिप की नहीं सोचता। बाज़ुकात ईमानदार को सिर्फ इनहेरिटेंस चाहिए, उसे सिर्फ जो है वो मिरास चाहिए, मगर बाप नहीं चाहिए। और बाप के साथ साथ उसे भाई भी नहीं चाहिए, उसे अपना घराना नहीं चाहिए। और किताब मुकद्दस में लिखा, याद रखिए कि खुदा कभी जबरदस्ती नहीं करता, वो कभी जबरदस्ती का खुदा नहीं है। बाज़ुकात हम कह सकते हैं कि वो उसे रोक सकता था, मगर खुदा ने मुझे और आपको आजाद मर्जी दी हुई है। उस आजाद मर्जी में इस मुसरफ बेटे के बाबत लिखा है कि जब उसके बाप ने सुना तो उसे उसका हिस्सा लौटा दिया। स्टोरी सीम्स टू बी वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। क्यों? आपको मालूम नहीं है कि बाप के साथ क्या गुजरी होगी जब बेटे ने यह कहा होगा कि पापा आई वांट टू गो, आई वांट टू लीव यू, मुझे मेरी इनहेरिटेंस दे दे। बाप के साथ क्या गुजरी है किसी को मालूम नहीं है, और ना यहां पर लिखा गया है। बट आप पोर्ट्रे कीजिए, रिफ्लेक्ट करके देखिए, सोचिए कि जब कोई अपने घर को छोड़ के जाना चाहे तो पेरेंट्स पे घराने पर क्या गुजरती है, वो किस तरह की कैफियत से दो चार हुआ होगा, मगर उसे उसकी इंडिपेंडेंस अजीज है, उसे उसके फैसले अजीज हैं, वो उसे उसके फैसलों से सिखाना चाहता है, वो उसे उसके फैसलों से तरबियत करना चाहता है। खुदा बाज़ुकात हमें हमारे फैसलों के मुताबिक जीने की इजाजत देता, फिर सुनिएगा, खुदा बाज़ुकात हमें हमारे फैसलों के मुताबिक जीने की इजाजत देता है। गो लिव विद देम, आप अपने फैसले के मुताबिक जिए, बट ऑलवेज रिमेंबर योर डिसीजंस विल टेक यू समवेयर विच इज नॉट डियर टू गॉड। बाज़ुकात हमारे फैसले हमें उस जगह लेकर जाएंगे जहां या वो जगह खुदा को अजीज नहीं है, और ना मेरे और आपके लिए बेहतरी का सबब होगी। मगर क्या है, मुझे और आपको या चर्च को या खुदा के घराने को खुदा की नेमतों बरकतों लज्जतों निफासतों और इनहेरिटेंस को चाहिए, मगर खुदा के साथ रिलेशनशिप, उसके खानदान के साथ घराने के साथ ताल्लुक नहीं दरकार मुझे। और नतीजतन क्या हुआ, बाप ने उसे उसके फैसले के मुताबिक जीने के लिए छोड़ दिया। लिखा किताब में कहता है उसने उसी का हिस्सा दे दिया। नतीजा यह है, हमारा हर फैसला बेहतरी को जन्म नहीं देता, बागियाना रवैया बेहतरी को जन्म नहीं देता। बाप ने कोई जबरदस्ती नहीं की, उसने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। हां वो टूटा होगा, वो रोया होगा, वो चिल्लाया होगा अकेले में, उसने कहा होगा बेटा व्हाई यू वांट टू गो, तू क्यों जाना चाहता है, कुछ नहीं लिखा, तफसीर कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि यह सब हुआ होगा। ऐसे नहीं है कि विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, विदाउट ए डिटेल डिस्कशन उसने कहा कि बेटा जा चला जा, जा चला जा, जा जा, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, आई वांट टू लेट यू गो आउट ऑफ माय होम। ये नहीं है ऐसा, बहुत सी डिस्कशन हुई होगी, बट एवरी पीस ऑफ डिटेल इज नॉट गिवन देयर, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। यह किस कल्चर में लिखी गई है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, ये ईस्टर्न कल्चर है जहां पर रिलेशनशिप जो है वो इंपॉर्टेंस रखते हैं, मगर उसे जाने दिया गया, वो चला गया, उसने अपना सब कुछ लिया, मालो मता लिया, और वो अपने फैसले के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जीने के लिए निकल खड़ा हुआ। और किताब मुकद्दस में लिखा है उसने अपना राह लिया और वो चला गया दूर दराज। क्या लफ्ज लिखा है, بعض اوقات ہم اتنے دور چلے جاتے ہیں, اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ہمارا ہمارے باپ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہے ہی نہیں ہے, جیسے نیور ایگزسٹڈ. اور اس کا یہ جملہ کہ وہ دور چلا گیا اس بات کی دلالت ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ سے بہت دور جانا چاہتا تھا. He wanted to go far away. ہم بھی بعض اوقات بہت دور چلے جانا چاہتے ہیں, ہم ریلیشن شپ سے دور جانا چاہتے ہیں, ہم رشتوں سے دور جانا چاہتے ہیں, ہم خدا خدا کے گھر سے دور جانا چاہتے ہیں. بٹ آلویز ریمبر, ہمارا دور جانا بعض اوقات ہمارے لیے مصیبتوں کو جنم دے رہا ہوتا ہے. جتنا آپ دور جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا جتنا آپ دور جا رہے ہوتے ہیں, اتنا در حقیقت آپ اور میں ہم اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کے گھر میں, خدا کے لوگوں میں رہنا, خدا کی صحبت میں رہنا ہمیں مضبوط کرتا ہے, ہمیں تیار کرتا ہے, ہمیں تیار کرتا اور تیار رکھتا ہے. چلا گیا, بٹ اس کے جانے کے بعد حالات بدلے. کتابوں کا اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ خرچ کر دیا. He spent even a single penny. Whatever he had, he spent all of it. سب کچھ خرچ کر دیا. اور جب ملک میں قحط پڑا, کال پڑا, تو کتاب مقدس میں لکھا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا. یاد رکھیے, خدا یعنی سورس کے ساتھ دھیان کیجیے گا, جب آپ سورس سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں اپنی برکتیں لے کے لالچ کے ساتھ, دغا کے ساتھ, خود غرضی کے ساتھ اس سورس سے لے کے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں, جتنا دور جاتے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اب ان برکتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا, ان میں ایڈیشن نہیں ہو رہا, بلکہ جو کچھ ہے اٹس بینگ اسپینٹ, وہ خرچ ہو رہا ہے, وہ لگ رہا ہے. And the point of time will come when everything will go away. سب کچھ چلا جائے گا. جب تک آپ سورس کے ساتھ جڑے ہیں آپ کی برکتیں تو آپ کی ہوتی ہوتی ہیں, بلکہ سورس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے بھی آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اسے بھی آپ بانٹ رہے ہوتے ہیں, اسے بھی آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس نے چھوڑا ان برکتوں کو, تھوڑی برکتوں کو, تھوڑی چیزوں کو لے کر وہ چلا گیا. مگر ٹائم ایسا آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور کتاب مقدس کہتی ہے کہ جب ملک میں کال پڑا اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, وہ ایک کھیت میں گیا, وہاں پر مزدوری کرنے لگا. اور اس کی خواہش یہ تھی کہ سوروں سے جو سور پھلیاں کھا رہے تھے ان پھلیوں کو کھائے. آپ اس کا ڈکلائن چیک کیجئے, آپ اس کی تنزلی چیک کیجئے, آپ اس کی حالت پر غور کیجئے کہ اب اسے جانوروں کا چارہ چاہیے. یہ وہ باغی شخص ہے جو خدا خدا باپ کو اپنے گھرانے کو رد کر کے آیا ہے, اور اس تھوڑی سی نعمت اور برکت کے چکر میں خود غرضی کے سبب سے غلط فیصلہ کر کے دور چلا گیا ہے. اس نے ہی وانٹڈ ٹو ہیو اے ڈسٹینس, اس نے فاصلہ رکھنا چاہا ہے, اس نے ڈسٹینس رکھنا چاہا ہے, وہ چاہتا تھا کہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, فاصلہ رکھے, چھوڑ دے سب کو, انجوائے کرے اپنی لائف کو. That's how we do always. اس لیے مجھے اور آپ کو سورس سے بنے رہنا ہے. جتنا سورس کے ساتھ جڑ کے جتنا استعمال کریں گے نا, اتنا اور جاری ہوتا چلا جائے گا, اور جاری ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سورس جو ہے اس کے پاس انلمیٹڈ بلیسنگز ہیں, غیر محدود لا محدود برکتیں ہیں اس کے پاس. مگر میں اور آپ بعض اوقات تھوڑے کے چکر میں لے کر الگ ہو جاتے ہیں, جس کے سبب سے کیا ہے وہ تھوڑا جاتا رہے گا. اور اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس نے عیاشی کی کسبیوں میں اڑا دیا, اور پھر جانوروں کسی اس پر نوبت آئی ہے کہ پھر وہ مانگنے لگا کہ میں پھلیاں کھاؤں. اور سنیے گا کیا ہوا, جب اس طرح کی حالت ہوئی تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے مزدوروں کے ساتھ بات چیت شروع کی. اب سلسلہ چینج ہونا شروع ہوا ہے. अब बदलना शुरू है, हालात बदलने शुरू है। हालात कैसे बदल रहे हैं? उसने अपने साथ जो नौकर थे उनसे बातचीत शुरू की कि मेरे बाप के घर में इतने मजदूर हैं कि वो खाकर सोते हैं। लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहा है? मजदूर। बेटे और बेटियों की बात नहीं कर रहा। स्टिल नॉट थिंकिंग ही वॉज वर्दी ऑफ बींग इवन हिज सन। वो मजदूरों की बात कर रहा, बेटे और बेटियों की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब खुदा के हां उसके मजदूर तो खाती खाते हैं, मगर बेटे कितना खाते होंगे। अब उसकी ये है कि मजदूरों का सही, क्योंकि उसके मजदूर भी भूखे नहीं रहते, उसके बाप के घर के मजदूर भूखे नहीं रहते, उन्हें जानवरों किसी नहीं खानी। बल्कि जब वो बेटा है तो बाप के साथ उसके मेज पर खाता होगा। मगर उसने अपने गुनाहों को इस कदर बड़ा गहरा पाया है कि वो ये समझ रहा है कि इट्स ओके इफ आई एम नॉट गोना सिट विद माय डैड ऑन हिज टेबल, मैं तो एक मजदूर ही बन जाऊं तो काफी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसके मजदूर भी भूखे नहीं सोते। आमीन। उसके तो बेटे और बेटियां कैसे भूखे सो सकते हैं? क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है शेर का बच्चा, बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, मगर मेरा और सादिक जो है, मेरा बेटा किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा, किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा। तो फिर उसके हां कमी नहीं है, उसके हां किसी चीज की कमी नहीं है। और बेटे ने क्या किया? नंबर वन, वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। व्हेन यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, व्हेन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, व्हेन यू आर टोटली ब्रोकन, जब आप ब्रोकन है, जब सब कुछ खो चुका है, सब कुछ चला गया है, फिर भी आपके पास वक्त है। खुदा आपको वक्त देता है, खुदा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और इस शख्स के पास अपॉर्चुनिटी है। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो सोच रहा है, और उसकी सोच जो है, जो सोच बाप के घर से बहुत दूर चली गई थी, अब जब सब कुछ उसका चला गया है तो अब सोच बाप के घर में गई है। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब उसे अपने फैसलों पर नजरसानी करनी थी, अब उसे वो जर्नी देखनी थी जो उसे बाप के घर से लेकर आई थी। अब वो उस सफर पर निगाह कर रहा है, अब वो उन फैसलों पर निगाह कर रहा है। मैं और आप, हमें अपने फैसलों पर निगाह करनी है। मुझे और आप अपने उस डिस्टेंस पर निगाह करनी है जो बाप और हमारे दरमियान में हुआ है। हमें उन इंतखाबात पर, चॉइसेस पर निगाह करनी है जो हमने ली है, जो इंतखाबात हमने किए हैं। क्यों? क्योंकि मेरा हर इंतखाब, एवरी चॉइस इज नॉट फ्रॉम गॉड एंड इट्स नॉट गारंटेड बाय गॉड। अब वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे और आपको जब इस तरह की सिचुएशन है, आई डोंट नो कि हम में से कितने टूटे हुए हैं, हम में से कितनों ने गलत फैसले किए हैं, हम में से कितनों ने गलत इंतखाबात किए हैं, मुझे मालूम नहीं है, बट आई वांट टू रिमाइंड यू, आई वांट टू गिव यू समथिंग। आप और मैं क्या करें? हम रिफ्लेक्ट करें, हम अपने माजी पर निगाह दौड़ाएं, क्योंकि माजी इज स्टिल देयर, स्टिल देयर। व्हाई इट्स स्टिल देयर? क्योंकि ये मुझे और आपको सिखाना चाहता है, ये मुझे और आपको बताना चाहता है, ये मुझे और आपको जो वो तरबियत करना चाहता है। पास्ट इज ए प्लेस ऑफ लर्निंग। मेरा और आपका माजी मेरी और आपकी तरबियत की जगह है। और यहां पर इस शख्स ने रिफ्लेक्ट करना शुरू किया, मेरे बाप के घर में, वो देख रहा होगा, आंखें बंद होगी और सोचता होगा, उसे सारा मंजर नजर आता होगा, कोई मजदूर इधर से आता खा रहा है, कोई इधर से आता खा रहा है, कोई इधर से आके शेयर हो रहा है, और मेरे बाप के टेबल पर मेरा भाई बैठा होगा और वो इंजॉय कर रहा होगा। अब उसे क्या है? अब सूअरों की गिजा चाहिए, अब उसे मजदूरों का सा बनना है, और वो मजदूरों का सा बनना चाह रहा है, और वो रिफ्लेक्ट करता है। सुनिए, लिखा है, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहां जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा। क्या चराने भेजा? आपने कभी खुदा के यहां खुदा के लोगों को सुअर चराते देखा है? नो, नॉट एट ऑल। खुदा के लोग हमेशा भेड़े चराते हुए मिलेंगे आपको। यहां सुअर चरा रहा है। जब आप और मैं खुदा खुदा के घर घराने को छोड़ते हैं तो बदतरीन हालत में दाखिल होते हैं। हमारी जॉब जो है, हमारी जो जॉब नेचर है वो भी बदतरीन होती है। बाप मुझे और आपको बदतरीन जॉब्स नहीं देता, सिलेक्टिवली अच्छी जगहों पर रखता है। और यहां पर ये क्या कर रहा है, सुअर चराने जा रहा है। और ये उसका फैसला है जो उसे लेकर यहां पर आया, सुअर चराने लगा। हम में से कितने हैं जो सुअर चराना चाहते हैं? सुअर चराने का मतलब बदतरीन हालत में चले जाना है, बदतरीन जॉब्स का होना है, बदतरीन इकोनॉमिक कंडीशन का होना है, बदतरीन स्पिरिचुअल हालत का होना है। ये इमोशनली टोटली जो था वो ब्रोकन था, और उसे आरजू थी कि वो फलियां जो सुअर खाते हैं उन्हें उनसे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे वो भी ना देता था। फिर उसने होश में आकर, किस में आकर, इसका मतलब पहले वो होश में नहीं था। जब आप गलत फैसले कर रहे हो, जब आप गलत इंतखाबात कर रहे हो, जब आप खुदा को रद्द कर रहे हो, खुदा खुदा के घराने को रद्द कर रहे हो, तो आप पर मैं होश में नहीं है। वी आर नॉट इन द सेंसेस, वी आर नॉट इवन इन द राइट सेंसेस। हम राइट सेंसेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अगर अपनी राइट सेंसेस में हो तो वी विल नेवर एवर ट्राई टू रिजेक्ट द वन हु क्रिएटेड अस। उसे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। और यहां लिखा है कि उसने होश में आकर, और इसीलिए मां बाप बाजू का हाथ कहते हैं, कहती ते मत मारी गई है। मगर असी की कहने हैं, साडे मां प्यो की मत मारी गई। हम कहते हैं कि तुहाडी मत मारी होएगी। दिस इज हाउ वी रिस्पॉन्ड। मां बाप कहते हैं कहती मत मारी गई है, इसे होश नहीं है, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस। बट द थिंग इज, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं ये लम्हा फिक्री है। और लिखा है कि वो होश में आया। वक्त है मेरे और आपके होश में आने का। अगर आज आप टूटे हुए हैं, आज आप बिखरे हुए हैं, बदी में है, गुनाह में है, शहवत परस्ती में, बुत परस्ती में, जादूगरी में, हसद में, बोगस में, तिफिके में, जुदाइयों में, नशाबाजी, नाच रंग में, तो याद रखिए वो जो फासला है होश में आने का वक्त है। We need to come into our senses. हमें होश में आने की जरूरत है। अगर आप होश में हैं तो फिर आप अपने आप को सरेंडर करेंगे तैयारी के लिए। अगर बदहोशी के आलम में है, बेहोशी के आलम में है, तो रेजिस्ट करेंगे, बगावत करेंगे, रिबेल करेंगे खुदा और खुदा के काम के खिलाफ। लिखा कि उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूर हैं। जब आप होश में आ जाते हैं, जब आपको रियलाइज होना शुरू हो जाए, आप रिफ्लेक्ट करें, आप देखिए कि आप कहां थे, अब कहां पर हैं। मुकाशवा की किताब में क्या, देख तू कहां से गिरा है, बिहोल्ड, देख तू कहां से गिरा है। बात देखने की है, बात रियलाइजेशन की है, बात फिक्र की है, बात सोच किया, बात एहसास किया। अगर एहसास गया, फिक्र चली गई, सोच चली गई, ध्यान चला गया, गहरी नजर चली गई, तो याद रखिए होश में नहीं आ सकते, होश में नहीं आएंगे। इसका होश में आना दर हकीकत अपनी बदतरीन हालत से निकलने की तैयारी थी। सुनिए, इसका होश में आना अपनी बदतरीन हालत का एहसास था, अपनी बदतरीन हालत में से निकलने की सोच थी। होश में आना बदतरीन हालत के खिलाफ अब बगावत थी। पहले वो अपनी अच्छी हालत के खिलाफ बगावत करके आया था, खुदा के खिलाफ बगावत करके आया था, मगर अब जब होश में आया तो अब क्या कर रहा है, अपनी बदतरीन हालत के साथ बगावत कर रहा है। ये साइन है, इट्स अ साइन कि अब चीजें बदलने वाली हैं, अब हालात बदलने वाले हैं। जब आप होश में आ जाए तो समझ लीजिए समथिंग इज गोइंग टू चेंज, यू गोइंग टू गेट अ न्यू एक्सपीरियंस। आप कुछ पाने वाले हैं, जो कुछ आपका खो गया है उसकी रिकवरी का डोर खुल रहा है। A door is being opened. But कैसे? होश में आने से. और लिखा कि वो होश में आया. जब आप होश में आएंगे तो फिर आपको कदर होगी, फिर आप वैल्यू करेंगे. जिसे आपने रिजेक्ट किया, जिसे आपने दुत्कारा था, जिसे आपने छोड़ दिया था, जिसके साथ आपने फासला रखना चाहा था, then you wanted to reconcile with the one. फिर आप reconcile करना चाहेंगे. होश जो है ये हमें वापस लेकर जाती है, हमें रिस्टोर करती है, हमें बहाल करती है, हमें रिफ्लेक्ट करने का मौका देती है. लिखा के फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के. अब उसे बाप याद आ रहा है, अब रिलेशनशिप को वो हाईलाइट कर रहा है. जब पैसा था, जब मालूमता था, ही वॉज नॉट इवन मेंशनिंग हिज नेम. वो तो बाप को बाप कहने से भी शर्मा रहा होगा, बाप को बाप कहना भी उसके लिए गुनाह शायद होगा. बट नाउ व्हेन थिंग्स गॉट अगेंस्ट हिम, अब उसे बाप का नाम याद आ रहा है, अब वो रिलेशनशिप को याद कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, नजर दौड़ा रहा है, अब उसे रिलेशनशिप की कदर हो रही है. और याद रखिए, मुझे और आपको रिलेशनशिप की उस वक्त कदर होती है जब हमें धोखे मिलते हैं. When you get deceived, then फिर हम वैल्यू करते हैं. और यहां पर इस शख्स ने पुकार के कहा है, मेरे बाप के हां मजदूर भी वधू खाते हैं. अब उसे वैल्यू हो रही है कि कितना सोर्सफुल बाप है मेरा, किस कदर उसके हां मौजूद है सब कुछ. और जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किया सुनिएगा, फिर उसने होश में आकर कहा मेरे बाप के बहुत से. क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? बहुत से, न्यूमरस, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से मिलता है. किससे मिलता है? बोलिएगा मेरे साथ, किससे मिलता है? बोलिए चर्च, किससे मिलता है? क्या मतलब इफरात का? अबंडेंटली, कसरत से. अब भाई मजदूरों को कसरत से मिलता है, बेटे और बेटियों को कैसे मिलेगा? उन्हें कैसा और कितना मिलेगा? अगर आप बेटे और बेटियां हैं तो फिर आपकी मिराज और है. अगर आप बेटे और बेटियां, आपका मुकाम और है, आपका रिलेशनशिप और है, उन्हें कितना मुयस्सर आएगा? तो यहां इस शख्स की होश में आने की अलामत सुनिए. उसने कहा कि मेरे बाप, उसे रिलेशनशिप याद आ गया, फिर उसे अपने बाप की वैल्यू याद आई, उसे अपने बाप के हां अबंडेंटली खाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है. जब खुदा मौका दे तो होश में आए और सोचिए कि कहां, कैसे 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 आपके बाप के घर में बाबर की चीजें मौजूद है. वैल्यू देम, वैल्यू कीजिए. अफराद से मिलती है. और फिर कंपैरिजन देखिए, ही इज मेकिंग अ कंपैरिजन, अ ब्यूटीफुल कंपैरिजन. मेरे बाप के घर में, मेरे बाप के घर में मजदूरों को अफराद से मिलता है और मैं यहां भूखा पड़ा हूं. दैट्स अ कंपैरिजन. मेरे बाप के घर में वादू खाने वाले मजदूर ने और मैं यहां भूखा मर रहा हूं. इसे कंपैरिजन. बाप के हां रहेंगे तो अफराद से मिलेगा. जिन रिसोर्सिस पर आपने तकवा किया था, जिन पर भरोसा किया था, जिन पर आपका बड़ा मान था, दिखना फिनिश साम थे, खत्म हो जाएंगे. मगर रिसोर्स के साथ कनेक्शन आपकी नेमतों बरकतों को कभी खत्म नहीं होने देगा. आइए बोले हालेलुया. होश में आना, होश में आए, रिफ्लेक्ट करें किसकी वैल्यू क्या है. जब आप वैल्यू करना शुरू करेंगे तो रेस्टोरेशन का डोर खुलेगा. आइए बोले हालेलुया. वैल्यू करेंगे तो रेस्टोरेशन का डोर ओपन हो जाएगा. और यहीं तक काफी नहीं है, हमें सिर्फ डोर खुला हुआ नहीं चाहिए, वी नीड टू टेक अनदर स्टेप. आपको रिफ्लेक्शन के बाद, गहरी नजर के बाद, अपने माजी पर रोशनी डालने के बाद, दर हकीकत आपको रिन्यूअल की तरफ जाना है, आपको नए होने की तरफ जाना है, आपको अपने आप को ताजा करना है, रिफ्रेश करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, असर नौ तामीर करना है। और जब तक आप असर नौ अपने आप को तामीर नहीं करेंगे, आप और मैं कभी भी उस बरकतों के दरवाजा से बरकतों वाले के पास कभी नहीं जा सकते। और इस शख्स ने होश में आने के बाद अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन के लिए तैयार किया है। याद रखिए, आपके और मेरे हां, जब मैं यहां हाथ रख रहा हूं, इसका मतलब मेरे हां, मेरे अंदर से रिकंस्ट्रक्शन शुरू होती है और बाहर से जाहिर होती है। यू गेट रिकंस्ट्रक्टेड ऑन द इनसाइड, आप अंदर रिकंस्ट्रक्ट होते हैं और ऊपर से आपका फिर जाहिर होना शुरू होता है। जब आप अंदर से टूटते हैं, बाहर से जाहिर होते हैं, आप अंदर से बनते हैं तो बाहर से जाहिर होंगे। और इस शख्स के जब वो होश में आया तो अंदर से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, रिन्यूअल का काम शुरू हुआ। और किताब मुकदस में इफ्सियों के खत में लिखा हुआ चौथे बाब में, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार कर, बोलिएगा मेरे साथ, क्या? अपनी पुरानी इंसान, टेक इट ऑफ, पुट इट ऑफ, ओल्ड सेल्फ, जो पुरानी इंसानियत है उसे क्या करो, उतार कर नहीं पहनो। आइए बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां बजाएं, प्रेज गॉड, हालेलुया। याद रखिए, जब तक मैं और आप अपने माजी पर निगाह नहीं दौड़ाएंगे, अपनी बागियाना जर्नी को चेक नहीं करेंगे, हम होश में आकर भी होश में नहीं हो सकते। इसने अपने माजी पर निगाह दौड़ाई, अपने बाप, अपने बाप और बाप के साथ रिलेशनशिप को वैल्यू किया, भाई सब कुछ याद कर रहा था वो, और फिर उसके बाद उसने रिन्यूअल का स्टेप लिया। और रिन्यूअल का स्टेप क्या है? लिखा कि उसने उठकर, क्या करके उठना, यह रिन्यूअल की निशानी है, यह नए होने की निशानी है, यह कुछ करने की तरफ बढ़ रहा है। अब वो बदलना चाहता है, ही वॉन्टेड टू टेक 180 degree turn। वट डज इट मीन 180 degree turn? अब वो पलटना चाहता है, अब वो जहां से आया उसी तरफ वापिस जाना चाह रहा है, अब वो पलट चुका है, 180 degree turn ले लिया है, नया होना चाह रहा है, नएपन का तजर्बा करने जा रहा है। लिखा क्या? वो उठकर, मुझे और आपको उठना है, उठना है। अभी मेरे एक भतीजे ने मुझे एक वीडियो भेजी, उसके ऊपर लिखा हुआ था, उसने एक सरमन मुझे भेजा, और वो उसके भेजने का मतलब ये था कि चाचू जरा चेक कीजिए यह सरमन कितना अच्छा है। उस सरमन का टाइटल लिखा हुआ था, गिरना बुरी बात नहीं, एंड आई वॉज शॉक्ड। अब मुझे उसने भेजा कि इसे चेक करें और पढ़ें, और सरमन का टाइटल क्या है? गिरना बुरी बात नहीं। एंड आई सेंट हिम ए मैसेज, आई सेंट नवीद, गिरना बुरी बात है, ये जो सरमन का टाइटल इसने लिखा है ना बंदे ने, बिब्लिकली जस्टिफाइबल नहीं है, गिरना बुरी बात है और गिरे रहना उससे भी बुरी बात है। अगर गिरे रहना या गिरना बुरा नहीं है तो तौबा, पछतावा, पलटना, मुआफी, देयर इज नो मीनिंग फॉर देम, उनका मतलब खत्म हो जाता है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करने, गिरना बुरी बात है, गिर के गिरे रहना बदतरीन बात है। किताब में कहते हैं ना, साधक 7 बार गिरता है मगर फिर क्या किया जाता है? उठा खड़ा किया जाता है। भाई अगर गिरना बुरी बात नहीं है तो आदम तो एक ही बार गिरा सी, एक ही बार गिरा था, अगर बुरी बात नहीं है तो उसे सजा काहे की मिल रही है? गिरना बुरी बात है मगर होश में आना उत्तम बात है। होश रिकंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाती है, रिन्यूअल की तरफ लेकर जाती है, मगर करना क्या है? पुरानी इंसानियत को उतार कर, टेक ऑफ, पुट इट ऑफ, ओल्ड सेल्फ जो है, बाज़ुकात हम नया बनना चाहते हैं पुराने के साथ, नहीं, मैं पुरानी मशकों में नहीं डाली जाती। आप नई मैं चाहते हैं, आप नया मसा चाहते हैं, आप नई ताजगी चाहते हैं, आप नया तजुर्बा चाहते हैं, तो फिर आपको नया होना पड़ेगा, नया होना पड़ेगा। लिखा फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के यहां बहुत से मजदूर है, 18 मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। और यहां से मैं कह रहा था, यहां से रिक्रिएशन शुरू होती है। और जब अंदर से आप नहीं बदलेंगे तो बाहर बनावट रह जाएगा, बनावटी मसीही बाहर रह जाएगा, फेक क्रिश्चियंस। अंदर से और ये शख्स रिन्यूअल की तरफ बढ़ रहा है, नया होने की तरफ जा रहा है। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, उसने फैसला कर लिया कि जिस बाप को मैं छोड़ कर आया हूं उसी के पास वापस जाऊंगा। जिसको आप रद्द कर रहे हैं ना, ए टाइम विल कम आपको उसकी वैल्यू होगी, रिफ्लेक्शन रिन्यूअल की तरफ लेकर जाएगा, रिन्यूअल की तरफ लेकर जाएगा, फिर आप उसकी वैल्यू करेंगे, फिर आपको उसकी कदर होगी। लिखा कि वो कहता है कि मैं अपने पास, अब वो किसी और के पास नहीं जाना चाहता, वहीं पर दोबारा जाना चाहता है जहां से आया था। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज कि जहां से आप आए हैं वहीं पर जाएं। मुकाशफा, तू जहां से गिरा है नजर कर वहीं पे। लिखा है, देख तू कहां से गिरा है, कहां से गिरा है। इसका मतलब जहां से गिरा है नजर भी वहीं पर कर, और जहां से आया नजर भी वहीं पर कर। ये प्रोडिगल सन, उसे अब वहीं पर निगाह करनी है। क्यों? क्योंकि वहीं पर निगाह करेगा तो रिकवरी शुरू होगी, वहीं पर निगाह करेगा तो ब्लेसिंग्स शुरू होंगी, वहीं पर निगाह करेगा तो रेस्टोरेशन शुरू होगी। और कहीं से ना तो तब्दीली आएगी, ना मुहफी आएगी, ना बहाली आएगी, ना खुशहाली आएगी, वहीं से सब कुछ मुयस्सर आएगा। और उसी की तरफ उसे वापिस जाना था, और ये उसकी रिन्यूअल की तरफ पहला दूसरा कदम था। डोर ओपन हो चुका है, अब वो उस डोर की तरफ बढ़ रहा है, डोर की तरफ चल रहा है, अंदर दाखले की तरफ जा रहा है। ये होश में आने के बाद की बात है। होश काफी नहीं है, यू हैव टू टेक अ स्टेप। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, और फिर सिर्फ जाऊंगा नहीं, फिर जाऊंगा नहीं, मेरे अंदर जो रीजनरेशन का काम हुआ है ना, सुनिएगा, जो रीजनरेशन का काम हुआ है वो बोलता है। वो क्या करता है? बोलता है। और रीजनरेशन का काम हुआ है, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। लिखा उसने कहा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा, कहूंगा, यानी जुबान से इकरार वाजिबी है। फजलदार है रब, बख्श गुनाह सब मेरे। रिफ्लेक्शन, गहरी नजर नया बनाती है, और नए बनने के लिए दाऊद कहता कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा फजल नाला रब, बख्श गुनाह सब। सुनिए क्या लिखा है, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, अबाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूं। कन्फेशन है, एतराफ है, भागयाना तबीयत अब नहीं है, हट धर्मी नहीं है, और मैंने तो ठीक ही किया था। हमारी माफियां भी इस तरह की होती हैं, हमारे एतराफ भी इस तरह के हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया पापा, बट येट आई वांट टू लिव विद यू, मैंने कुछ नहीं किया मगर रहना मैं तेरे साथ चाहता हूं। अंदर से जब रिकंस्ट्रक्शन और रीजनरेशन शुरू होती है तो जुबान से एतराफ वाजिबी और दुरुस्त होता है। और वो एतराफ क्या कि मैं आसमान और तेरी निगाह में दोनों का गुनाहगार हूं। और याद रखिए, जो कुछ मैं करता हूं ना जमीन पर, वो सिर्फ लोगों के खिलाफ नहीं करता, खुदा के खिलाफ भी करता हूं, दोनों का गुनाहगार हूं। और इसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की थी, बाप का माल लेकर निकला था, मगर क्या लिखा है, उसने कहा कि मैंने आसमान और तेरे हुजूर में गुनाह किया। तो कभी यह ना सोचें कि मैंने तो भैन नु सताया है ना, मैं कह रहा रब नु सताया। पालूस से क्या कहा यीशु मसीह ने, ए पालूस तू मुझे क्यों सताता है? और पालूस किसे मार रहा था? चर्च को। पालूस किसे मार रहा था? चर्च को, भैनों को। भाइयों को, मसीहों को, न्यूली कन्वर्ट्स को, ही वाज प्रोसिक्यूटिंग देम। और यीशु मसीह ने आकर कहा, पौलुस तुम मुझे क्यों सताता है? जब आप आदमियों का गुनाह करते हैं, जब आप लोगों को तंग करेंगे तो आप खुदा को तंग कर रहे हैं, खुदा को तंग कर रहे हैं। और खुदा खामोश रहने वाला नहीं है। उसने पौलुस साउल पर जाहिर होकर कहा, साउल तू मुझे क्यों सताता है? और साउल कहता, कर ले जो मेरा करना है। Saul कहता, can do whatever you want to do, I will continue persecuting your people, I will continue doing it, you want to do something for me or against me or to me, do it। मगर क्या था, खुदा की हैबत, खुदा के जुमले में पालूस की सारी बदियां जाहिर हो चुकी थी। तो पालूस को अब चेंज होना था, बदलना था। लिखा के उससे कहूंगा, ए बाप आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार, अब इस लायक नहीं हूं। हमें दोबारा पोजीशंस चाहिए, बाप के साथ दोबारा रिलेशनशिप चाहिए, तो उसे कहें, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, मैं इस लायक नहीं हूं। और अगर जाकर यह कहें, मैं तो तेरा बेटा हूं, उसके उससे उसने कहा कि पहले तुझे याद नहीं था कि तुम मेरा बेटा है, मगर उसने एतराफ किया। यह खुला एतराफ है, यह साफ एतराफ है रिन्यूअल का। किसका एतराफ है जी? रिन्यूअल का एतराफ है। क्या वो नया हो चुका था? उसे एहसास था कि उसने अपने बाप को तंग किया, उसने अपने खानदान को तंग किया, उसने भागयाना रवैया दिखाया, वो कस्बियों के पास जाता था, वो बदी बदकारी सब कुछ वो करता था जो जमीन और खुदा के खिलाफ थी। इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। सोच देखिए, ये उठकर अपने बाप के पास जाना, ये रिन्यूअल थी। वो उतार चुका था अपना पुराना सब कुछ। और तीसरी बात, जाग चुका था, होश में था, रिन्यू हुआ, नया हुआ, अब वो जागा है। ये रीअवेकनिंग है। खुदा आपको दोबारा बुला रहा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से क्या कर, जी उठ। हम में से कितने कहेंगे कि मैं मुर्दा हूं? नो वन इज गोना से दिस, राइट? हम सब जाग रहे हैं मुर्दा रूहानी हालतों के साथ। और बाइबल कहती है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मुर्दों में से जी उठना दर हकीकत रीअवेकनिंग है। अपने गुनाह से बाहर आना है, अपने भागयाना रवैये से बाहर आना है, अपने पुराने फैसलों पर सोचना और फिक्र करनी है, उन्हें रद्द करना है। खुदा आपको और मुझे चाहता कि जागे, और फिर जग जाग जाते हैं, उठते हैं, एहसास जागता है। तो किताबे मुकद्दस में लिखा, जब वो अपने बाप की तरफ गया, वो डोर जो उसने ओपन किया था उसकी तरफ दौड़ा, तो जब रीजेनरेशन जेन्युइन हो ना, सुनिएगा, जब रीजेनरेशन जेन्युइन हो, कन्फेशन जेन्युइन हो, आप सच्चे दिल से, सिदक दिल से किसी के साथ चलते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, तो याद रखिए, जब यहां से जेन्युइन कन्वर्जन होता है, तो फिर वो जेन्युइन कन्वर्जन इससे गर्ज नहीं है कि आप किसके हजूरी में जा रहे हैं। दर हकीकत आपसे पहले आपका कन्वर्जन खुदा के पास जाता है। अंडरस्टैंड कीजिए, आप मस्बा पर गिरे हैं या नहीं गिरे, आपका कन्वर्जन, जेन्युइन कन्वर्जन खुदा के हुजूर में गिरा होता है, खुदा के हुजूर में पहले पहुंचता है। और मैं इसे इस तरह से देखता हूं, किताबे मुकद्दस में लिखा है, आपको मालूम होगा कि ये स्टोरी जो है, ये मिसाल जो तमसील जो है, हमने 42 तमसीलें जो बाइबल में, उनमें से ये भी की हुई है, और उसमें हमने इसे नया नाम दिया था। और वो नया नाम क्या था, जब हम पैराबल्स को नाम दे रहे थे तो इसे एक नया नाम दिया था, इसको हमेशा प्रोडिगल सन कहते हैं, मगर मैंने कहा था कि ये प्रोडिगल सन नहीं है, ये स्टोरी को हम एक नया नाम देते हैं, क्या, मुंतजर बाप, अवेटिंग फादर। منتظر باپ. اور جب آپ کا کنورژن باپ کے پاس چلا جاتا ہے آپ سے پہلے, جینوئن کنورژن باپ کے پاس آپ سے پہلے پہنچتا ہے, تو باپ تیار ہوتا ہے. لکھا ہے کہ باپ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے تو وہ دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف گیا. اس سے پہلے کہ آپ دوڑ لگائیں, آپ کا کنورژن آپ کے باپ کو آپ کی طرف دوڑاتا ہے, آپ کی طرف دوڑاتا ہے, وہ آپ کی طرف لے کر آتا ہے. وہ آپ کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو یہاں سے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ جو آپ کی ریفلیکشن ہے, رینیول ہے, ری اویکننگ ہے, خدا کو اویکن کرتی ہے, باپ کو اویکن کرتی ہے. اور وہ صرف اٹھتا نہیں ہے, بیٹا نہیں اٹھا بلکہ باپ بھی اٹھا اور دوڑ کر اپنے بیٹے کی طرف گیا ہے. اب باپ کتا نظر اس کے کہ بیٹا باغی تھا, بدکار تھا, لوٹ مار کر کے آیا ہے, قسمیوں کے ہاں رہا ہے, بغاوت کر دی ہے. اب باپ کس پر نظر کر رہا ہے؟ ریکنسٹرکشن پہ, ریپیئرمنٹ پہ غور کر رہا ہے, تبدیلی پر غور کر رہا ہے. تو آپ جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تبدیلی پر نگاہ کرتا ہے. اور لکھا ہے اس نے اسے گلے لگایا, مزدور بننے آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے مزدوروں کو گلے لگایا ہوگا؟ آؤ, مزدوروں کو نہیں گلے لگایا گیا. بیٹے سے بغل گیر ہوتا ہے, اسے چوما, اپنی رنگ اس کے ہاتھ میں پہنائی. دوبارہ رنگ کا پہنایا جانا اختیار اسے دیا جا رہا ہے. اتھارٹی از بینگ ڈیلیورڈ ٹو ہم کہ تو مزدور بننے کے لیے آیا ہے. بھیا میں تجھے اپنی اتھارٹی دے رہا ہوں. ریلیشن شپ کی نشانی ہے. کس کی نشانی ہے؟ یہ ریلیشن شپ کی نشانی ہے. مزدوروں کو اپنی انگوٹھیاں اتار اتار کے نہیں تھا دے رہا, بیٹے اور بیٹیوں کو وہ دیتا ہے. ریلیشن شپ کی ریسٹوریشن ہے. اس نے اپنی انگوٹھی دی, اپنا جبا اتارا اور اسے پہنا دیا. اب اس کا مطلب کیا تھا؟ جو بیٹا میرا ہے وہ تیرا ہے. یہ ریسٹوریشن کے کمال ہیں, یہ تبدیلی کے کمال ہیں. کہ تبدیلی صرف آپ کی آپ کے اندر سے نہیں ہوتی بلکہ جو کچھ کسی دوسرے کا وہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے. اور یہ سب کچھ اس کا ہوا ہے. بٹ کیا کریں, اثر نو تعمیر کی طرف بڑھیں. کہیں خدا میں گناہگار ہوں. اقرار آپ کو دوبارہ بحال کرتا ہے اور جینوئن کنفیشن. آمین. آئیے سر کو چکائیے, یہ سر کو جھکائی, اسے کہ خداون میں جانتا جانتی ہوں کہ تو قادر مطلق ہے, تو رحیم ہے, تو ریسٹوریشن کا خدا, تو ریکریٹ کرنے والا ہے, تو خداون آسمانی باپ نیا مخلوق بنانے والا ہے. تو نے اس خداون کھوئے ہوئے بیٹے کو ڈھونڈا ہے, اس میں ہوش اور رینیول پیدا کی ہے. مجھ میں بھی کر خداوند, جسے میں نے رد کیا ہے, جسے میں نے ڈی ویلیو کیا ہے, ریلیشن شپ کے خلاف بغاوت کیا, مجھے فضل دے کہ میں دوبارہ واپس لوٹوں اور تیرے نام کو جلال دوں. آئیے چند لمحے آپ کو دیتا ہوں. خداوند سے کہیں, خداوند مجھ پر فضل کر. لمحہ فکری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ چرچ جو ہے وہ پلیس آف پریپریشن ہے, تیاری کی جگہ ہے, باغیوں کو تابے دار بنانے کی جگہ ہے, بدکار کو راستی کا راہ دکھانے کی جگہ ہے, داغدار کو صاف کرنے کی جگہ ہے. ہاللویا. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئیے گا. آپ سے درخواست ہے, اگر آپ کسی بھی سبب سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھے رہیے گا, کوئی مسئلہ نہیں. مگر جو کھڑے ہو سکتے ہیں پلیز اپنے لب اپنے اپنی نشستوں سے اٹھیے, کھڑے ہوں چند لمحوں کے لیے. آئیے اس سے کہیں, خداوند اس گھر پر تیری برکت چاہتے ہیں. ہم اس گھر کے ساتھ, اس گھر کے رہنما کے ساتھ, اس گھر کے خدا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنی اسپرچول حالتوں میں, اپنے ماں باپ کے ہاں, اپنے گھرانے کے ہاں, ہمارے ازدواجی حالتیں, ہماری معاشی حالتیں, ہماری روحانی حالتیں میرے خدا تیرے سامنے ہیں. ہم باغی نہیں تابعدار رہنا چاہتے ہیں. ہمیں خدا وفادار بناتا چلا جا, ہمیں محبت کرنے والا بنا, ہمیں برکتوں کی ویلیو کرنے والا بنا میرے خدا من. مصرف بیٹے کی طرح نہیں, کھوئے ہوئے بیٹے کی طرح نہیں, پلٹے ہوئے بیٹے کی طرح بنا میرے خدا. آئیے میرے ساتھ مل کے کہیے, اگر شالو یا بینی میں سے کوئی بھی کیا گا سکتا ہے, کاستا یہ کنترا فضل نہ اعلی رب بخش گناہ سب میرے, تو پلیز میں چند منٹ اور لوں گا, اور زیادہ کچھ نہیں ہے, ختم کریں گے ہم اسے جلدی سے, صرف ریفلیکشن کا ٹائم ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ میں کہاں پر ہوں, کیا میں تیار ہوں, اور تیاری کے لیے مجھے اور آپ کو وقت چاہیے, خدا کی حضوری چاہیے, کلام چاہیے, پاکرو چاہیے, روزہ چاہیے, دعا چاہیے, مسا چاہیے.
بخش گناہ سب میرے.
آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے, آئیے اسے کہے خدا ہمیں معاف کر,
فضل رحم کر, تو یہ اوتے میرے مانگو فضل رحم.
آئیے مل کے کہیے, مل کے بولیے,
تو یہ اوتے میرے فضل نالے,
چنگی طرح تو کے,
چنگی طرح
یس یس لارڈ ہاللویا,
میرے
یسوع کے نام سے میرے خدا صفائی کر میرے خدا, کلینز اس لارڈ, واش اوے اس سنز لارڈ, ہاللویا ہاللویا Hallelujah, Hallelujah,
Hallelujah.
آسمانی باپ یسوع کے نام میں
بخش دے سب برے میں نو کر تو پاک, بخش دے سب برے آئی فضل نالے.
ہاللویہ ہاللویہ, خداوند آسمانی باپ تو نے داؤد کو واپسی کا راہ دکھایا میرے خدا, تو نے لازر کو قبر سے باہر نکالا میرے خدا, پالوس کے راستہ کو بدل کے رکھ دیا میرے خدا. خداوند دیکھ آج جس مصرف بیٹے کو تُو نے واپس بلا لیا, اس جیسے ہم میں سے کئی یہاں پر موجود ہیں میرے خدا, ہمیں واپسی کی طرف لے کر آ میرے خدا, ہم میں ہوش پیدا کر میرے خدا, ہمیں ڈلیور کر میرے آسمانی باپ یسوع کے نام سے. ورٹیکل لائف چرچ پر, خاندانوں پر, بیٹیوں پر, بیٹوں پر, بہنوں پر, عزیزوں پر, بچوں پر, تیرا ہاتھ چاہتا ہوں یسوع جی, ڈلیور اس لارڈ. خدا ریکنسٹرکٹ کر, اثر نو تعمیر کا کام کر میرے خدا, فضل کر دے, کلام کے بیج مضبوط ہوتے چلے جائیں, اور یہ کلیسیا زور پائے. تیرے کلام میں لکھا ہے اے چھوٹے غلے خوف نہ کھا, کیونکہ تیرے مالک کو پسند آیا کہ بادشاہی تجھے دے. خدا من نے چھوٹے غلے کو بادشاہی دی ہے. ہاللویا, تھینک یو لارڈ. خداوند تیرے کلام کے لیے, تیرے بچوں کے لیے شکر گزار ہوں. جتنی جانوں نے خداوند رینیول کا ایکسپیرینس کیا, ان پر تیرا فضل چاہتا ہوں. اپنے لوگوں کو تازگی عطا فرما اور آگے لے کر چل, یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں. آمین, آمین, آمین. آئیے بولے ہاللویا, ایک نعرہ لگائیں گے میرے ساتھ, بالکل مل کے بولیے گا, بچے بھی لگائیں گے. ہلو ایوری باڈی, بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. آئیے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجائیے, پریز گاڈ, یس ہاللویا. پلیز تشریف رکھیے, ہدیے اور آفرنگ کا سانگ ہے, یہ آخری سانگ ہے, اس کے بعد ہم رخصت ہوں گے. جو کچھ خداوند کی حضوری میں آپ نے کمٹ کیا ہے آئیے واپس لوٹائیے خداوند کو. کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. آپ زیل کے ذریعہ سے, کیش ایپ کے ذریعہ سے, چرچ اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ بھی بھیج سکتے ہیں, آپ چیک بنا سکتے ہیں. یہ آفرنگ کی تھیلی پڑی ہوئی ہے ادھر سامنے جی, سہیل بھائی یہ تھیلی ادھر پڑی ہوئی سامنے, پلیز کوائر کے ساتھ مل کر گائیں گے.